एक बार अंगद ने जोर से उसके छाती में मुक्का मारा, वज्रधनुष चक्कर खा के नीचे गिर गया। तत्काल वो उठा और अंगद के ऊपर बाणों की उसने वर्षा की। नाना प्रकार के बाणों से अंगद को बड़ी परेशानी पैदा हुई। बंदरों ने देखा कहीं युवराज अंगद के ऊपर मृत्यु न आ जाए, अतएव एक साथ कई बंदर शिला वगैरह लेकर के उस वज्र राक्षस के ऊपर टूट पड़े। वो राक्षस भी बड़ा बलवान था, उसने एक बाण से कितने ही पर्वत शिखरों को डहाना चालू कर दिया। वज्रदंष्ट का बल देख करके बांदरों का उत्साह कुछ कम होने लगा और वज्रदंष्ट उस समय में बड़े क्रोध से बांदरों को देख रहा था और बांदरों की सेना के अंदर घुस गया और एक एक बांदर के ऊपर 7, 8, 9, 5 ऐसे तरह तरह बाण लगाने लगा। उन बाणों से बांदरों के शरीर कटने लगे। वज्रदंष्ट और अंगद अब दोनों आपस में खूब जोर से भिड़ गए। बंदर के ऊपर उस वज्रदंष्ट ने 100 बाण मर्मस्थल के ऊपर लगाए और वो अंगद उससे घायल हो गया। उसके बाद एक वृक्ष को तोड़ करके उन्होंने बड़े संभ्रम के साथ रथ के ऊपर प्रहार किया तो वज्रदंष्ट का रथ था वो रथ उसका टूट गया। सारथी उसका मर गया और मरने के बाद में घोड़े वगैरह सब उसके पूरे हो गए। वज्रदंष्ट अभी भी युद्ध से विरत नहीं हुआ, उसके पास धनुष बाण थे, अतः बड़े उत्साह के साथ वो लड़ रहा था। उसने वृक्ष को काट दिया, शिला फेंकी शिला को काट दिया। अंत में अंगद जी ने उस वज्रदंष्ट के ऊपर अपने शरीर से उसके ऊपर ही प्रहार करके उसको नीचे पटक करके और उसकी तलवार उन्होंने छीन करके वज्रदंष्ट का वहीं पर सिर काट दिया। सिर काटने के बाद सब बंदर बड़े प्रसन्न हो गए। रावण को जाकर किसी ने कहा कि महाराज आपका वज्रदंष्ट भी पूरा हो गया। रावण कहता है कि तुम लोग सूचना देने वाले कोई बानर सेना के गुप्तचर हो क्या? कोई मुझे ये सूचना नहीं देता कि अंगद मर गया, कि हनुमान मर गया, कि राम मर गया, कि लक्ष्मण मर गया, कि सुग्रीव मर गया? सब हमको आकर के हमारी मृत्यु हमको सुनाते हो कि महाराज जो होता है वही तो सुनाएंगे, वो कोई मरे नहीं हम क्या करें? तो अच्छी बात है, नहीं मरे तो अब मरेंगे। आओ अकंपन, तुम आओ, देखो तुम तो सेना को सबको रक्षा देने वाले हो, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा काम है। अकंपन माने जो कभी कंपित नहीं होता है। जाओ अकंपन, तुम जाकर के युद्ध करो, राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव को सारे बांदरों को तुम जीतोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से अकंपन भी वहां बड़े उत्साह के साथ में अपने सेनाध्यक्ष को कहा कि भाई हमारे लिए रथ मंगाओ। रथ मंगाया गया और उस रथ के अंदर बैठ करके सारी सेना को कहा कि देखो आप लोग अपने मन में उत्साह रखो, सेना के लिए जीतने का सबसे बड़ा शस्त्र उत्साह होता है। उत्साह वाला व्यक्ति हारा हुआ भी जीतता है और उत्साहहीन व्यक्ति जीतता हुआ भी हारा गया है। चलो अपने आज दो ही तो काम होगा, या तो मरेंगे और या मारेंगे, इसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं है। मारेंगे तब भी एक दिन मरना ही है, और जब मरना ही है तो फिर मारने से क्यों डरे? इसलिए दोनों को बराबर समझो, आओ और अपने को युद्ध के अंदर झोंक दो। इस प्रकार से अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए इस युद्ध के अंदर वो कूद पड़ा। उस समय में उसकी जो सेना वहां पर चली तो इतनी मिट्टी उड़ी, उससे इतनी मिट्टी उड़ी कि लोग एक दूसरे को देखना भूल गए। न उनको ध्वजा दिखती है, न पताका दिखती है, न घोड़ा दिखता है, न रथ दिखता है, न रथी दिखता है, न सारथी दिखता है, कुछ भी उनको पता नहीं चला। हरिन एव संदुष्टा हरयो जगनु राहवे। कभी कभी तो इतनी भूल पड़ गई कि बंदरों को बंदरी मारने लग गए और राक्षसों को राक्षस ही मारने लग गए, पता ही नहीं रहे। इतना जोर से अंधकार हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला और वे बानर राक्षस सब खून से लथपथ हुए। वे बाद में उनको पता चला, तब राक्षसों ने तो बांदरों को मारना चालू किया, बांदरों ने राक्षसों को मारना चालू किया। अकंपन ने जो वहां पर युद्ध किया वो सबसे बड़ा, उसने बड़ा चमत्कारी युद्ध किया, ऐसा युद्ध पहले वालों ने नहीं किया। बांदर लोग उस समय छक्का छुड़ा करके बेचारे भागने लग गए। उस समय में कुमुद है, नल है, मैंद है, दिविद है, एक साथ सारे के सारे बांदर अकंपन के पास में आकर लड़ने लग गए। ऐसा कर्म देख करके बंदरों के मन में बड़ी घबराहट हुई और अकंपन ने भी अपने सारथी से कहा, सारथी ये बलवान बंदर हैं, इन बलवान बंदरों के द्वारा हमारी सेना में बड़ा संहार हो रहा है और ये बंदर जब कूप करने लगते हैं तो ये किसी प्रकार किसी को देखते नहीं है, आओ जल्दी से जल्दी इन बंदरों को हम अभी मत डालते हैं। ऐसा विचार करके बंदरों की तरफ उसने अपने रथ को चलवाया और हनुमान जी महाराज तथा दूसरे लोग थे वे भी वहां पर अकंपन के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। युद्ध के अंदर उस समय में बबूर बलवंतो ही बलवंतम उपाश्रिता है, देखो कोई बलवान व्यक्ति बलवान के पास चला जाए अपने आप ही बल आ जाता है। जैसे कोई क्रोधी आदमी के वहां दो आदमी लड़ते हो और एक क्रोधी आदमी वहां चला जाएगा लड़ाई तेज हो जाएगी। दो आदमी ताश खेलते हो और एक कोई अच्छा ताश खेलने वाला वहां पर पहुंच जाएगा तो उनके ताश खेलने के अंदर गति आ जाएगी। ऐसे ही बलवान दो लड़ते हो तो वहां बलवान के जाते ही युद्ध के अंदर तेजी आ जाएगी। अकंपन पहले लड़ रहे थे और हनुमान जी वहां पर पहुंचे और वहां पर युद्ध में बड़ी तेजी आई। हनुमान जी महाराज उस समय में पर्वत शिखर के समान दिखाई दिए। अकंपन ने देखा कि ये वही बानर है जिसने लंका को जलाया था। इधर हनुमान जी महाराज ने देखा कि अकंपन बड़ा भयंकर राक्षस है, इसने बंदरों का बड़ा नाश किया है। तो हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि इस अकंपन का अभी वध करना ही है। भीतर में उन्होंने विचार कर लिया और विचार करके हनुमान जी महाराज बड़े कुपित होकर के और जब पैर पटक पटक करके पर्वत उखाड़ने लगे तो पृथ्वी यूं कांपने लगी। अकंपन भी बड़े वेग से अपने हाथ में बाण लेकर हनुमान जी के पर्वतों को छिन्न भिन्न करने लगा। बाण लगाए और छिन्न भिन्न हो जाए, हनुमान जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने उसी समय में एक अश्वकर्ण वृक्ष को लिया और लेकर के और वे अकंपन के सामने आए। पर अकंपन तो अकंपन ही था, अकंपन ने उस समय में अपने हाथ में बाण तो ले ही रखे थे, वृक्ष के ऊपर बाण छोड़ना चालू किया ताकि वृक्ष कट जाए, लेकिन हनुमान जी ने उस बाणों से बचा करके और सीधे उसके रथ के ऊपर प्रहार किया जिससे उसे घोड़े रथ सारथी सब पूरे हो गए। उसके साथ वाले राक्षस थे सब भग गए, हनुमान जी और अकंपन दो रह गए। हनुमान जी के उस वृक्ष को उन्होंने काट दिया अकंपन ने, उन्होंने दूसरा वृक्ष लिया हनुमान जी ने और लेकर के और अंत में अपने छाती के अंदर श्वास को रोक करके पूरी शक्ति लगा करके हनुमान जी ने जोर से उसके सिर पर प्रहार किया और वो वहीं पर पूरा हो गया। कई राक्षस थे वो अब दुबक करके सीधे जाकर लंका में अपने घरों में छिप गए। अरे क्या हुआ क्या हुआ, बस निकलो मत, वही बंदर है जिसने लंका को जलाया था, आज अकंपन को मार दिया है, लेकिन कौन जाकर कहे। लंकाम प्रविष्टेशु राक्षसेशु, लंका में प्रविष्ट हुए उन राक्षसों के द्वारा सब बड़ी घबराहट हो गई। और इधर बंदरों ने हनुमान जी का बड़ा पूजन किया, हनुमान जी हमारे पर तो आफत आती है, आप उस आफत को मिटाते चले जाते हो। इस प्रकार से भाई हनुमान जी महाराज की आकाश में देवता भी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण भी उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, सुग्रीव और विभीषण हनुमान जी की पीठ थपा थपा करके उनको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। राक्षस राज रावण से जाकर कहा कि महाराज क्या बात है, महाराज कोई दूसरा सैनिक है क्यों, हमने अभी अकंपन को भेजा है। महाराज विचार कीजिए, अकंपन का नाम जो कंपित नहीं होता, वो कंपित हुए बिना ही महाराज उसके तो लगाया सिर पर वहीं पर पूरा हो गया। रावण ने कहा कि अरे अकंपन मर गया। हाँ महाराज, किसी और से पूछना पड़ेगा कि इतना ही सोच लूं, क्या महाराज बिल्कुल सच्ची सूचना है। फिर प्रहस्त को कहा कि प्रहस्त अब आप जाइए, आप जो हैं बड़े श्रेष्ठ हैं, अब तो देखो प्रहस्त हमारी सेना के अंदर किन किन को देखूं, एक तो मैं हूं, एक कुंभकर्ण है, एक तुम हो, एक मेरा पुत्र मेघनाद है और एक निकुंभ है, ये पांच आदमी बचे हैं। पांच आदमी हम लोग बड़े अच्छे युद्ध करने वाले हैं, बाकी भाई और कौन है? जल्दी जाओ प्रहस्त। आप जब जाओगे तो आपको तो देखते ही बंदर लोग कांपने लग जाएंगे। राक्षसों की सेना में बड़ा उत्साह आएगा और ये चंचल चित्त वाले बानर बड़े अविनीत हैं, इनमें विनय नहीं है। ये बानर ये नहीं देखते कि कितना बड़ा राजा है, ये तो बंदर सीधे ही जाते हैं कि नाक पकड़ के खाते हैं किसी का। अरे भाई ये राजा इसका नाक मत पकड़ो, पर ये नहीं मानते। अविनीता चपला है, किसी के आंख के अंदर नाखून जो है गाले, किसी के कान पकड़ के खींच लेंगे, किसी का सिर पकड़ लेंगे। ये बड़े असभ्य हैं, ये असभ्य लड़ाई करते हैं। सभ्य लड़ाई शस्त्र से होती है, पर बंदर बड़े असभ्य हैं। जाओ इन बंदरों को सभ्यता सिखाओ और इन बंदरों को कहो कि देखो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम आओ ना तो लड़ाई झगड़े की ट्रेनिंग लेके आना। जाओ। प्रहस्त ने कहा ठीक है महाराज। अब प्रहस्त वहां से रवाना हुआ। प्रहस्त रवाना होने से पहले कहने लगा महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक बात आपके सामने निवेदन करता हूं। क्या कहना चाहते हो? महाराज मैंने कितनी बार आपको सभा के अंदर सावधान किया था कि सीता का हरण करके आपने महान अपराध किया है। बड़े बड़े कुशल मंत्रियों के बीच में मैंने उनकी बात न मानकर आपको सावधान किया था, उसका फल आपने देख लिया ना। लाइए आप लाइए धूम्राक्ष को, लाइए अकंपन को, लाइए वज्रदंष्ट को, लाइए बड़े बड़े योद्धाओं को लाइए आप। यदि आप सीता को प्रदान कर देते तो आज आपको ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। मैंने आपको कहा कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो आप राम जी के साथ में जुड़ जाओ, लेकिन आप जुड़े नहीं। ठीक है मैं तो आपके इसके लिए मैं तो मर जाऊंगा या मैं युद्ध करूंगा मार दूंगा, लेकिन आपने ये काम हम राक्षसों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, हमारी आप अपनी प्रजा के साथ में, हम लंका निवासियों के साथ में अच्छा नहीं किए। रावण ने कहा कि कोई बात नहीं प्रहस्त, वो तो समय निकल गया, अब तुम जाओ युद्ध करो। प्रहस्त वहां से रवाना हुआ। प्रहस्त ने अपने बलाध्यक्ष से कहा देखो भाई हमारे लिए कोई छोटा मोटा रथ नहीं होना चाहिए, बड़े वेग से चलने वाले घोड़े हमारे रथ में होने चाहिए। हमारे घोड़े इतने वेगवान होने चाहिए कि जब वो बंदर मरने लगे तो उनके लाशों के ढेर को भी आराम से घोड़े पार कर ले रहे। आज पशु पक्षी सब बंदरों के मांस से तृप्त होंगे। ऐसा कहकर के वो राक्षस के महल से रवाना हुआ। बड़े सुंदर रथ में बैठा, ब्राह्मणों को नमस्कार किया, अग्नियों को तर्पित किया, सुगंधित वायु को उसने देखा सुंघा और अच्छी माला उसने पहनी, आशीर्वाद लिया, टीका वगैरह लगाया। सबने उनको कहा कि प्रहस्त अब आपके हाथ में लंका की विजय है। इस प्रकार से भेरी नाद करता हुआ रथ में बैठकर प्रहस्त वहां से रवाना हुआ है। प्रहस्त के रवाना होने पर प्रहस्त के मन में बड़ा उत्साह है और आगे पीछे बहुत लोग प्रहस्त की जय जयकार कर रहे हैं। प्रहस्त के साथ नरांतक, कुंभहनु, महानाद, समुन्नत ये चार और बड़े बड़े राक्षस हैं और प्रहस्त पूर्व द्वार की ओर रवाना हुआ है। उसके साथ में बहुत बहुत हाथियों का झुंड है, घोड़ों का झुंड है, क्योंकि प्रहस्त सेना का सबसे बड़ा अधिपति है। अतएव उसके साथ में युद्ध करने के लिए बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धा हैं। उस समय में भाई प्रहस्त के चलते हुए पक्षियों की चूकी चूकी आवाज आई और उस समय में अग्निया हैं, वो अग्निया मानो कोई वमन्ते पावक ज्वाला शिवा घोरा ववाशिरे। देखो गीदड़ियां हैं, वो अपने मुंह से आग जो है उगलने लगी, आकाश में उल्कापात होने लगा और वायु बड़ी कठोर चलने लगी। लोगों का मन एक दूसरे की प्रसन्नता से हीन हो गया और रथ के ऊपर राक्षस लोग हैं, वो देखते हैं कि खून की बूंदों की वर्षा होती है और बड़े अपशकुन हो रहे हैं। परंतु प्रहस्त चला जा रहा है और चलते चलते वो बांदरों की सेना के बीच में चला गया है। बाद में बीच में जाने पर राम जी ने विभीषण से पूछा, अरे विभीषण, ये विशाल काय वाला इतनी बड़ी सेना लेकर ये कौन आ रहा है? इसका क्या बल है? क्या इसमें ताकत है? इसके विषय मुझे बताओ, ये तो बड़ा बलवान मालूम देता है। विभीषण जी महाराज ने कहा कि महाराज, ये रावण का सेनापति है, इसका नाम प्रहस्त है, ये लंका के अंदर रहता है, सेना के इसने 3 ठीक अच्छे विभाग कर रखे हैं और यहां रह करके ये सब प्रकार से सेना को सुरक्षित रखता है, बड़ा ताकत वाला है। इसी के आधार पर रावण ने बहुत विजय प्राप्त की है। तब प्रहस्त थोड़ा आगे आया, राक्षसों की सेना आगे बढ़ी, बंदरों की सेना राक्षसों को देख करके एक बार आश्चर्य में पड़ गई, फिर बंदर लोग राक्षसों के ऊपर टूट पड़े और राक्षसों के मन में भी बड़ा उत्साह था, क्योंकि आज उनके साथ सेनापति था ना, इसलिए उस उत्साह के अंदर वो भी उनके ऊपर टूट पड़े। जगृहू पादपांश चापे, उस समय में बंदरों ने उन वृक्षों को भी उखाड़ना चालू किया जिनके ऊपर खूब अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे, और उन पर्वतों को भी उन्होंने उखाड़ा जिसमें खूब वृक्ष लगे हुए थे, क्योंकि वो समय कौन वृक्ष है कैसा वृक्ष है देखने का नहीं था, बस वृक्ष को उठा करके सीधा प्रहार करने का ही समय था। कोई पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं, इधर से बाणों की वर्षा होती है और इधर से शस्त्रों की वर्षा होती है, बानर और राक्षस आपस में खूब युद्ध कर रहे हैं, दोनों ही प्रकार की सेना का बड़ा संघार हो रहा है, कोई परिघ लिए हुए है, कोई शूल लिए हुए है, कोई फरसा लिए हुए है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है, निरुच्छ्वासा पुनः केचित, कोई श्वास नहीं लिए हुए बिना किसी बात के सीधे लड़ाई कर रहे हैं, कोई घायल होकर गिरते हैं और कोई मर जाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं पूछता है, और कोई तलवार ले लेकर के एक एक का दो दो भाग कर देते हैं। ऐसे राक्षसों का बांदरों का आपस में संहार हो रहा है, वहां पर खून का कीचड़ सा हो गया, खून और मांस का कीचड़ सा हो गया। नरांतक, कुंभनु, महानाद और समुन्नत, ये जो सेनापति के प्रधान सचिव थे, इन्होंने बंदरों का नाश करना प्रारंभ किया। तब उछल करके दिविद आए और एक पर्वत को लेकर उन्होंने नरांतक का वध किया, और दूसरा दुर्मुख नाम के बंदर आए, उन्होंने वृक्ष लेकर समुन्नत को मार दिया। तीसरे में जामवंत जी आए, एक शिला लेकर उन्होंने महानाद को मार दिया, और फिर तार आए, उन्होंने कुंभनु को मार दिया वृक्ष के द्वारा। इस प्रकार इन चारों प्रधान सचिवों को मारने से प्रहस्त का थोड़ा बल था, वो बल क्षीण हुआ, मन के अंदर वो बड़ा घबराया और सोचने लगा कि ऐसा युद्ध तो पहले कभी नहीं किया था। फिर उसके बाद वहां पर बड़ा भारी युद्ध हुआ। प्रहस्त कई प्रकार के बाण चलाने में प्रवीण था, अतः उसने बड़े तेजी के साथ एक पर एक बाणों की खूब वर्षा की, और वो एक तरह से वहां पर खून की तो नदी बह गई, वो जो रण नदी हो गई। नदी देखो, नदी में जल होता है तो राक्षसों का और बांदरों का जो खून था वो तो उसमें जल था, और नदी कहीं एक जगह जाया करती है, कहां जा रही है कि यमराज रूपी सागर की ओर जा रही है, और नदी के अंदर कीचड़ होता है। कीचड़ क्या है कि लोगों के जो जिगर है, ये लीवर है और प्लिया है, यही उसमें कीचड़ है। कहते हैं नदी के पास में शैवाल होते हैं, माने बड़ी बड़ी घास और दूब होती है। कहते हैं कि ये जो आते पड़ी है, आते ही वहां पर शैवाल है, काई वगैरह होती है, और नदी होती है उसमें सारस वगैरह रहा करते हैं कि गीद हंस वगैरह, ये क्या ये यही उसमें सारस बने हुए, गीद वगैरह यही उस नदी के हंस बने हुए हैं। इस प्रकार से ये नदी है और इस नदी के अंदर राक्षस और बानर दोनों ही इसके अंदर पड़े हुए हैं, दोनों ही इसमें स्नान करते हैं। अंत में भाई नील ने जब सामने आकर अनेक प्रकार के पैतरों से प्रहस्त के सामने युद्ध किया, तो प्रहस्त ने नील के ऊपर कई बाणों की वर्षा की। उन बाणों की वर्षा से नील को बार बार घायल होना पड़ता था, वो भी वृक्ष को उठाकर प्रहस्त को मारने लगा, और प्रहस्त अपने बाणों से उसके वृक्ष को काटने लगा। इस प्रकार से अंत में उसने एक साल वृक्ष लिया और नील ने साल वृक्ष लेकर उसके घोड़ों को, सारथी को, सबको बराबर कर दिया। अब प्रहस्त अकेला रह गया। अब प्रहस्त ने एक मूसल लिया, मूसल लेकर के वह नील के ऊपर आक्रमण करने लगा और नील के ललाट के ऊपर उसने मूसल की मारी। नील यूं चक्कर खा करके, इसके सारे शरीर से खून बरस रहा था, चक्कर खा करके वो नीचे गिरा। नीचे गिर के और वो प्रहस्त समझता है कि मैंने इसको मार दिया है। उसी समय में बहुत जल्दी होश में आकर नील उछल करके एक बहुत बड़ी पर्वत शिला ली और शिला लेकर के उसने सीधा उसके सिर के ऊपर ही मार दिया और प्रहस्त वहीं पर पूरा हो गया। प्रहस्त बड़ी मुश्किल से मरा। उसके मरते ही जो है वहां पर खून 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 ही हो गया और राक्षस लोग जो बचे हुए थे वो इतने डर गए कि वो किसी बानर की तरफ देखे बिना सीधे ही अपने लंका के अंदर घुस गए और प्रहस्त मारा गया। प्रहस्त के मरने के बाद अब ये समाचार रावण को कौन कहे? परंतु भाई जाकर के कहने की बात तो थी ही। प्रहस्त के मरने के बाद जाकर रावण को सूचना दी कि महाराज क्या बात है कि महाराज आप क्षमा करेंगे कि क्या कसूर हो गया? कसूर नहीं महाराज, अप्रिय समाचार है। अप्रिय समाचार किसने किया है? बंदरों ने किया है। क्या अप्रिय किया है? आपके सेनापति प्रहस्त को मार दिया है। अच्छा, प्रहस्त मरेगा कभी बंदरों से? अरे चालाकी से किसी ने तुमको सूचना दी है। नहीं महाराज, सच्ची बात है, एक नील नाम के बानर ने उनको मारा है। नील नाम के बानर ने प्रहस्त को मार दिया, इसका मतलब बानरी सेना हमारे सब योद्धाओं को मारती है। अब मैं युद्ध के लिए तैयार होता हूँ। ना अवज्ञा रुकवे कार्या, अब उसने सब राक्षसों से कहा, सुनो आपने कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने इंद्रादि को अपने वश में किया है। मैं स्वयं आज शत्रु के नाश के लिए जा रहा हूँ और आज मैं बानर की सेना का, राम का, लक्ष्मण का और सुग्रीव का नाश करके आऊंगा। आज इस प्यासी पृथ्वी को लहू पिला करके तृप्त करूंगा। बाण और बांदरों का जो खून होता है उससे पृथ्वी बहुत जल्दी तृप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर के रावण क्रोध से मूर्छित हो गया और वो अपने बहुत जल्दी रथ से, वो जल्दी महल से निकला और एक उत्तम रथ था, रथ में बैठ गया। बड़े बड़े और योद्धाओं ने कहा कि महाराज को कौन मना करे, क्रोध आ गया। अब इनको कहेंगे अभी हम बैठे हैं, आप बाद में जाना, पर कब माने? रावण तो मानने वाला था नहीं। जाकर वो रथ में बैठ गया, प्रकाशमान वो रथ था, उस रथ में बैठ करके देव शत्रु रावण जब चलने लगा तो भाई रावण के लोग कई प्रकार के भेरी वगैरह बजाते बजाते आगे आगे चल रहे थे और पीछे कई उनकी स्तुति कर रहे थे, महाराजाधिराज और त्रिलोक विजयी, महाराज रावण की जय हो, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे। रावण उनकी पूजा लिए लिए, जो है उनका आदर लिए लिए शत्रु सेना में जा रहा था। उस समय में भाई रावण की आंखें बड़ी प्रदीप्त थी और रावण का चेहरा एकदम काले बादल के समान था और जिस प्रकार से भूतों से आवृत रुद्र रहते हैं, इस प्रकार से आज ये रावण अपने राक्षसों के बीच में दिखाई दे रहा था। ये राक्षस क्या था? महार नवाभ्रस्त तनितम, माने कोई बहुत बड़ा सागर रूपी मेघ है उसको भी वो हल्का करने वाले हैं। ऐसा वो जो है राक्षस रथ में बैठा बैठा वो बानरों की सेना की तरफ जा रहा था। उस राक्षस राज को देख करके भगवान श्री राम ने विभीषण को देख कर कहा, विभीषण एक नहीं नाना प्रकार की झंडियां, बड़े बड़े पताका जिसके लगे हुए हैं और जिसके रथ के चारों तरफ कई कई शस्त्र लटके हुए हैं, जिसके रथ के अंदर सांप अभी कई शस्त्र दिखाई देते हैं और जिसके साथ में बड़े प्रवीण योद्धा लोग आ रहे हैं, ये कौन है? ये किसका रथ है? ये तो साक्षात इंद्र के समान बल रखने वाला कोई विलक्षण सैनिक आ रहा है। राम के बात को सुनकर के विभीषण जी ने कहा, हे महाराज, ये जो रथ के पहले आगे आगे हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो कि चारों तरफ सेना का निरीक्षण करता हुआ आ रहा है और जिसके चलने से सारी पृथ्वी कंपित होती है, इसका नाम अकंपन है। अरे एक अकंपन को तो मार दिया था ना कि महाराज अकंपन नाम के यहाँ कई राक्षस मिल जाएंगे, एक नाम के कई राक्षस मिलेंगे महाराज, ये अकंपन है, इसका नाम भी अकंपन है। और महाराज जो रथ के ऊपर बैठा हुआ है और जिसके जिसके पताका के ऊपर सिंह का चिन्ह है और जो अपने धनुष को ऊपर नीचे चारों तरफ यूं घुमा रहा है और जो हाथी की सूंड के समान जिसका लंबा लंबा हाथ है और जिसके नेत्र बड़े डरावने हैं और जिसके दांत होठों से बाहर आए हुए हैं, ये वीर प्रधान इंद्रजीत जो कि रावण का बेटा है वो आ रहे हैं। और ये महाराज विंध्याचल पर्वत के समान, अस्ताचल पर्वत के समान, महेंद्र पर्वत के समान बहुत बड़े धनुष लिए हुए अतिरथी वीर आग फाड़ते हुए मुंह को यूं फैलाए हुए आ रहे हैं। इनका नाम अतिकाय है और उगते हुए सूर्य के समान जो लाल नेत्रों वाले हैं और जिनके यहाँ रथों में घंटे बज रहे हैं और जिसके यहाँ पर जो है कर्कश ध्वनि कर रहा है, उसका नाम महोदर है। और वो जो घोड़े पर बैठा हुआ है और जो अपने हाथ में सोने के वस्तु ले रखा है, युद्ध के शस्त्र भी इसी सोने के बने हुए हैं और प्रासम समुद्य मरीचि नद्धम और प्रास ले रखा है और जो है वज्र के समान जिसके पास में बड़ा वेगवान शस्त्र है, वो महाराज पिशाच है और जिसके हाथ में त्रिशूल है, पिशाच नाम है उसका, और जिसके पास में त्रिशूल है वो त्रिशरा है और जो काले मेघ के समान दिख रहा है वो कुंभ है और जो स्वर्ण के द्वारा बने हुए वज्र से युक्त है, अपने हाथ में परिक भी ले रखा है, उसका नाम निकुंभ है। और जो अपने हाथ में तलवार लिए हुए है रथ के ऊपर बैठा हुआ, ये नरांतक है। और महाराज जिसके विषय में आपने विशेषता से प्रश्न किया है, जिसके रथ के ऊपर अनेक अनेक घंटियां, अनेक अनेक ध्वजाएं लगी हुई हैं और अंदर अनेक अनेक घंटियां लगी हुई हैं, जो देवताओं के घमंड को दूर करने वाला है, जो इंद्र जो मतलब चंद्रमा के समान सफेद वस्त्र को पहन रखा है और चंद्रमा के समान सफेद छत्र को जिसने अपने धारण कर रखा है, वो राक्षसराज महायशस्वी वो रावण है, जिसके सिर के ऊपर मुकुट है और जिसके कुंडल यूं फड़फड़ा रहे हैं, और जो महेंद्र और वैव और जो इंद्र और यमराज के दर्प का शमन करने वाला है वो राक्षसराज रावण है। रावण को देख करके राम जी ने कहा, विभीषण, रावण का तेज तो मानना पड़ेगा, रावण सूर्य के समान दुष्प्रेक्ष्य है। देखो भाई, बात तो बात कहनी पड़ेगी, रावण का तेज अनुपम है, देवताओं में, दानवों में, वीरों में ऐसा कोई आपको तेजस्वी पुरुष नहीं मिल सकता जैसा ये आपका भाई रावण है। देखो विभीषण, पर्वत खड़ा हो चाहे रावण हो, एक जैसे दिखते हैं ये, पर्वतों से युद्ध करने में समर्थ हैं, इंद्रादि को युद्ध में हरा देते हैं। ये पापात्मा आज मेरे सामने आया है, सीता के हरण करने का जो क्रोध है, उस क्रोध को शमन करने का आज मुझे बड़ा अच्छा उपाय मिला, बहुत अच्छा हुआ ये आया है। राम एक धनुष्बाण लेकर के लक्ष्मण के साथ जहां रक्षोपति रावण आ रहा था, उस रावण के सामने आया है और सामने आकर के राम जोर से कहने लगे, द्वारेषु चरिया गृह गोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठत निर्विशंका। और राक्षस ने कहा, राक्षस ने कहा, ए राक्षसों, राक्षसपति रावण ने कहा, ए मेरे सैनिकों, मैं आपको एक बात कहना भूल गया हूँ, आप अभी सावधानी से सुन लो। मैं नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आया हूँ तो मेरे पीछे सारे सैनिक आ गए। ऐसा न हो कि शत्रु हमारा लाभ ले ले, हम तो बाहर रहे और शत्रु दूसरे मोर्चे से अंदर चले जाए और सब किवाड़ और यंत्र अपने कब्जे में कर लेवे और हमको बाहर ही रख देवे। इसलिए जितनी सेना मेरे साथ है उससे दुगनी सेना अंदर भी रहनी चाहिए ताकि शत्रु अंदर न आ जाए। इस प्रकार से राक्षसराज रावण ने सबको अंदर से भी सावधान होने की बात कही और स्वयं एक बहुत बड़ा धनुष लेकर के राम जी की सेना में घुस गया और वहां जाकर बंदरों ने जब उसके ऊपर पर्वत वृक्ष वगैरह ये एक साथ फेंकना चालू किया, उस राक्षस ने कुछ नहीं समझा, उनको सीधा एक बाण से सबको काटता चला गया और रावण का बल बढ़ता चला गया। उस समय में रावण के हाथ ऐसे लगते थे जैसे कोई शेष नाग लंबा लंबा कोई जो है ये सर्प, वो बस यूं सीधा यूं युद्ध करता था। अंत में उसने देखा कि ये बानर राज सुग्रीव है, सुग्रीव के ऊपर उसने बाण की वर्षा की, सुग्रीव के रावण के बाण सुग्रीव के छाती में लगे और सुग्रीव के शरीर से खून बहने लगा। उस समय में सुग्रीव घायल हो गया और पृथ्वी के ऊपर संज्ञा शून्य होकर के गिर गया। उस समय में गवाक्ष गवय